نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم شروع کریں گے مکہ اور مدینہ میں معرکے کی خبر, رائٹ؟ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے, یہ ہے نا, ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا پہلے, اور اس سے پہلے ہم کیا پڑھ چکے ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں, جو میں آپ کو بتا چکی ہوں. بدر کا قصہ سارا ہم نے الحمدللہ مکمل کیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن تک بدر میں رہے تھے, 3 دن تک. اور ان 3 دنوں میں ایک کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کیا تھا, جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے, کیا کام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جو کافروں کے لوگ جہنم واصل ہوئے تھے ان کو کیا کیا تھا, ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا, ٹھیک ہے. اور جو مسلمانوں میں شہید ہوئے تھے ان کے, جی, اس کا مطلب ہے ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے بھی قبروں, یعنی کافروں کے بھی جسموں کو, مردہ جسموں کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا تھا, بلکہ ان کو بھی ٹھکانے لگایا گیا تھا, ورنہ جانور ان کو کھا لیتے یا ان کی بے حرمتی ہوتی ان کی لاشوں کی. تو اس سے اس میں بھی آپ کو پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ رحمت کا, کہ دشمن کے ساتھ بھی کس طرح رحم کا معاملہ فرمایا. ایک اور آپ کو بات اس میں بتا دوں کہ جو سب سے پہلے شہید ہونے والے تھے, بعض اور بھی روایات ہیں, حارثہ کی بھی ہیں, حارثہ کی بھی روایات میں آتا ہے کہ حارثہ تھے جو سب سے پہلے شہید ہوئے تھے, ایک جوان تھے, اور بعض روایات میں آتا ہے محجہ بن صالح, یہ بحقی میں دلائل النبوہ میں, جو حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام تھے. اس کو آپ لکھ لیں اپنے پاس, محجہ میم ہے جیم عین, اور ہے دوسری والی, حلوے والی نہیں, محجہ بن صالح, یہ حضرت عمر کے غلام تھے, اور دنیا والے دیکھیں ان کو غلام سمجھتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ان کو سید الشہداء کا خطاب دیا تھا, سید الشہداء, سبحان اللہ, یعنی بدر کے شہیدوں کے سردار سمجھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یوم اذن محجہ سید الشہداء, یعنی بدر کے شہیدوں میں سردار جو ہیں وہ محجہ ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, دیکھیں ایک انسانیت نوازی آپ دیکھ لیں, کہ غلام کو سید الشہداء کا لقب دیا, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ غلاموں کو اس زمانے میں کیا سمجھا جاتا تھا, کہ کچھ بھی نہیں, بھیڑ بکریوں سے زیادہ ان کو قیمت نہیں دی جاتی تھی, اور دیکھیں یہاں پہ ان کو سید الشہداء کا خطاب ملا. اور شہداء میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ایک چھوٹے بھائی تھے وہ بھی شامل تھے, اس طرح اور بھی شہداء تھے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو کافر تھے وہ 70 آدمی تھے, اور ان میں 24 جو تھے سردار تھے, بڑے سردار تھے کافروں کے, اور ان کی لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا, اور ان میں ان کا ایک جو سردار تھا عتبہ بن ربیعہ, جو میں نے بات پہلے بھی آپ کو کہی تھی کہ ابو حذیفہ کا باپ, ابو حذیفہ ایک صحابی ہیں ان کا باپ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تسلی دلائی تھی ابو حذیفہ کو, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک سچے اور پکے مسلمان تھے, اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میرا باپ جو ہے اتنا حکمت والا ہے, اتنا وائز آدمی ہے, تو یہ ایمان لے آئے گا, لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آیا. اسی طرح ایک اور واقعہ کہ کافروں کا ایک سردار تھا عبیدہ بن سعید بن العاص, وہ اس دن ایسی زرہ پہنے ہوئے تھا کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں, جیسے ہم تالوت اور جالوت کے قصے میں پڑھا تھا نا کہ جالوت کیسے تھا اور داؤد علیہ السلام نے اس کو کس طرح سے مارا, اس کی بھی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں, اور اٹھا کے پتھر گلیل میں رکھ کے مارا تھا, تو اس آدمی کی بھی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں, اور اس نے چیلنج دیا تھا کہ میں ابو ذات الکرش ہوں, اس کا لقب تھا तो है कोई जो मेरा मुकाबला करे, क्योंकि इसके पूरे जिस्म पे लोहे का लिबास चढ़ा हुआ था, इसलिए हजरत जुबैर बिन अवाम ने इसकी आंखों का निशाना लिया था। हजरत जुबैर बिन अवाम कौन थे, पता है आप लोगों को? हजरत अस्मा के शौहर, शाबाश। तो उन्होंने एक छोटा सा नेजा लिया था और इसकी आंखों को निशाना बनाया था, और वो जो छोटा सा नेजा था वो उसकी आंखों में घुस गया और वहीं पे वो जहन्नुम वासिल हुआ। हजरत जुबैर कहते हैं कि मैंने इसकी आंख से हरबा निकालने के लिए बड़ा जोर लगाया, मगर वो इसकी आंख में बुरी तरह धंसा हुआ था, चुनाचे मैं इसके जिस्म पर चढ़ गया और इतनी कुव्वत से घुमा घुमा के हरबा निकाला कि इस पर दंदाने पड़ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जुबैर से मांग लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत जुबैर ने उसको वापस ले लिया। फिर इनसे अबू बकर सिद्दीक ने मांग लिया। उनकी वफात के बाद ये जो हरबा था ये हजरत उमर ने मांग लिया। फिर हजरत उस्मान की शहादत के बाद ये हजरत अली के घराने के पास आया और फिर उनसे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मांग लिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन है? इन्हीं के बेटे, जुबैर बिन अवाम के, जो सबसे फर्स्ट बॉर्न थे, मदीना में आए थे तो सबसे पहले ये पैदा हुए थे। तो इससे आपको पता चलेगा कि हजरत जुबैर कितने माहिर निशाना बाज थे, कितनी जबरदस्त कुव्वत वाले थे और कैसी उनकी महारत थी। अच्छा जी, आगे हम शुरू करते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पेज नंबर 196 है मेरी बुक में, आप लोग देख लें आपकी बुक में कौन सा है। तजल्लियात नबुवत, मक्का और मदीना में मार्के की खबर। मक्के में शिकस्त की खबर भागने वाले मुशरिकीन के जरिए पहुंची, जिससे उन्हें बड़ी जिल्लत और रुसवाई महसूस हुई, हत्ता के इन्होंने रोक दिया ताकि मुसलमान खुश ना हो। अच्छा, लुत्फ ये हुआ कि अस्वद बिन मुत्तलिब के तीन बेटे मारे गए और इन पर वो नोहा करना चाहता था। उसने एक रात एक नोहा करने वाली औरत की आवाज सुनी तो समझा कि इजाजत मिल गई है और झट अपने गुलाम को हकीकत मालूम करने के लिए भेजा। अच्छा, अब ये एक और बात जो डिफरेंट है यहाँ पे कि मक्का में मुशरिकीन मक्का को जो तरीका था, वो जब उनका कोई मर जाता था तो बहुत नूहा करना, जाहिलियत के जमाने की जो बातें होती हैं, आज भी हमारे जाहिल कल्चर में यही चल रहा है, नूहा करना, बैन करना, ऊंची ऊंची आवाजों में रोना, कपड़े फाड़ना, ये उनका तरीका था। तो क्या हुआ कि जब ये खबर वहां तक पहुंची है मुशरिकीन तक, पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया। हुआ ये कि एक आदमी आया, उसका नाम था हैथमान। हैथमान जब पहुंचा और वो बुरे हालों में था और उसने आके ये बताया कि ऐसे ऐसे ये मसला हो गया है, मुसलमानों ने कुफार को शिकस्त दी है और ये मामला हुआ है। तो जब उसने आके ये बताया और बड़े बड़े सरदारों के नाम लिए कि फलां भी मारा गया, फलां भी मारा गया, उतबा, रबिया, शैबा, अबू जहल, शाम बिन अमर कहते थे, उसका नाम तो ये था अबू जहल तो बाद में। तो ये हिस्सा, ये इब्ने खुजा यानी खुजाई कबीले से था। तो लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, यस कैसी तुम बात कर रहे। लोगों ने सोचा कि ये पागल हो गया, लोगों को एतबार नहीं आया। तो इतने में सुफवान बिन उमैया, ये उमैया बिन खल्फ का बेटा है सुफवान बिन उमैया, ले तो सुफवान बिन उमैया जो था वो काबे के साथ टेक लगाए बैठा था। जब उसने ये देखा कि ये आदमी आके इस तरह की खबरें दे रहा है, तो उसने कहा कि पागल हो गया, उससे पूछा, इससे जाके पूछो कि सुफवान बिन उमैया कहाँ है। इसलिए कि उसने सोचा कि हर एक का कह रहा ना, वो भी मर गया, वो भी मर गया, वो भी मर गया, तो कहेगा सुफवान बिन उमैया भी मर गया। तो उसने कहा कि बताओ सुफवान बिन उमैया कहाँ है। लोगों ने पूछा तो कहने लगा वो तो वहां बैठा है, लेकिन इसका बाप उमैया बिन खल्फ, मैंने उसको खुद देखा कि उसको घसीटे हुए ले जाया जा रहा था और वो भी मारा गया। अब लोगों को यकीन आने लगा कि ये वाकई इस तरह का वाकया हो गया और मक्का में मुशरिकीन की उसके बाद आहोजारी, रोना पीटना और नोहागिरी सुनी नहीं जाती थी। घर घर मातम, घर घर मातम। और वो आतिका की जो ख्वाब थी, आपको बताया था ना आतिका ने ख्वाब देखी थी, वो वाकई पूरी हो गई, हर घर में मातम था। और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाते हैं कि मुशरिकीन ये सूरत हाल देख के बड़े शर्मिंदा से हुए कि हमारे तो घर घर में मातम बिछ गया। अबू लहब का तो ये हाल हो गया था कि वो जैसे पागल सा हो गया। उसने पहले कहा कि मैं तो ये यकीन ही नहीं करता, इसलिए कि इन लोगों को ऐसे था कि हो ही नहीं सकता। और ये एक आदमी ने आके खबर क्यों दी, क्योंकि ये लोग इस कदर कॉन्फिडेंट थे कि हम जीतेंगे कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि अगर हम हार गए तो हम वापस आके रीग्रुप कहाँ करेंगे, कहाँ आके मिलेंगे। इसलिए कोई जिधर को जिसका मुंह हुआ वो उधर भागा, कोई उधर भागा, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। और इस तरह से जो पहला आदमी पहुंचा उसने जब आके खबर दिया तो उसको कह रहा फलां मारा गया, फलां मारा गया, फलां मारा गया, सबके नाम लेता जा रहा है और इनको यकीन नहीं आ रहा। उसने कहा अबू लहब ने, जब तक अबू सुफियान वापस नहीं आता और आके इत्तला नहीं देता मैं यकीन नहीं कर सकता। जब अबू सुफियान आया तो हजरत अब्बास के घर पे ये दोनों मिले। हजरत अब्बास क्या लगते हैं अबू लहब के भाई? अच्छा, अब जब उनके घर पे ये दोनों इनकी मीटिंग हुई तो अबू सुफियान ने जानते हैं क्या कहा? उसने कहा कि वल्लाही जू ही हम मुसलमानों से मिले तो हम पे गलबा पा गए, हमारे कुछ करने से पहले ही उन्होंने जिसको चाहा मारा और जिसको चाहा कैदी बनाया। और इसके बावजूद मैं अपने लोगों को इल्जाम नहीं देता, इसलिए कि वल्लाही मैंने देखा एक जमात थी जिसके सफेद चेहरे थे और वो चितकुबरे सफेद और सियाह रंग के जो घोड़े थे उन पर सवार थे, आसमान और जमीन के दरमियान ऐसे वहां से आ रहे थे और हम उन पर गलबा नहीं पा सकते थे। यानी अब इसको कहां से पता चला, ये तो था नहीं साथ, इसको जो लोगों ने बातें बताई। जब अबू लहब को ये पता चला तो उसको तो एक काइंड ऑफ डिप्रेशन हो गया, इस कदर डिप्रेशन हो गया और इस कदर वो बीमार हो गया। उसके बाद उसको एक बीमारी लग गई कि उसके बाद तो वो आपको पता है कि उसको तो मौत ही वाकई हुई, क्योंकि ये सिर्फ एक सरदार रह गया था जो बड़ा पीछे रह गया था, ये क्यों नहीं गया था, डरता था। और इसने अपनी जगह किसको भेजा था, एक और आदमी को, हाँ, इतना डरपोक था। अब उसने कहा ये तो पता चल गया कि ये तो मुसलमान जाने वाले नहीं, इसका मतलब है कि ये तो खत्म नहीं ऐसे हो सकते, ये हो गया, आज ये भी दिन आ गया कि इन्होंने हमें शिकस्त दे दी। अब क्या हुआ कि अबू सुफियान बहुत अकलमंद आदमी था नो डाउट, उसने अपने लोगों को जमा किया और उसने कहा कि ये जो हमारे यहाँ नुहागिरी हो रही है ये मत करो, इसको बैन कर दिया। क्यों? इसलिए कि जब मुसलमानों को पता चलेगा ना तो वो तो बड़े खुश होंगे कि इनके तो घर घर में मातम बिछा। और इस तरह से अल्लाह ताला ने एक तरह इनको एक और सजा दी, क्योंकि देखें जब ये नोहा करते थे ना तो अपने गम को इस तरह निकालते थे और सोचते थे कि हम अपने मुर्दों के लिए एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं उनके ऊपर गम करके। अब क्या है, वो एक प्रेशर कुकर की तरह अंदर ही रहेगा और अंदर ही घुलते रहेंगे और कुछ रो भी नहीं सकते, चीख नहीं सकते, जो इनका तरीका था एक वो भी नहीं कर सकते। अब यहां पे जैसे बताया गया कि अस्वद बिन मुत्तलिब के 3 बेटे मारे गए और इन पर वो नोहा करना चाहता था, तो उसने एक रात को, आप समझ आ गया ना कि नोहा करना चाहता था, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि अब बैन हो गया कि अब नहीं कर सकते। तो उसने एक रात एक नोहा करने वाली औरत की आवाज सुनी तो समझा कि इजाजत मिल गई है और झट अपने गुलाम को हकीकत मालूम करने के लिए भेजा। अब देखें ये कितने बेचैन थे कि किसी तरह हम नोहा करें। उसने वापस आकर बताया ये औरत तो अपने गुमशुदा ऊंट पे रो रही है। अस्वद ये सुनकर अपने आप पर काबू ना पा सका और बेइख्तियार पुकार उठा। उसने ये शेर कहे जिनका माना ये था क्या वो इस बात पे रोती है कि इसका ऊंट गायब हो गया और इस पर बेख्वाबी ने इसकी नींद हराम कर रखी है, तो तू ऊंट पर ना रो बल्कि बदर पर रो जहां किस्मतें फूट गई। मजीद चंद अशार कहे जिनमें अपने बेटों पर आहो फगा किया, यानी इतनी उनकी हालत बुरी हो गई थी। अब आप खुद सोचें कि उस वक्त में बेटे कितने हारे को प्यारे थे और उस बंदे के 3 बेटे मारे जा चुके, लेकिन वो उन पर रो भी नहीं सकता और उसको अब ये हो रहा है कि ये ऊंट पे रो रही है और मेरे तो देखो बेटे चले गए और मैं उन पे नहीं रो सका। तो यानी ये भी उनके लिए एक तकलीफ दे चीज थी। इधर अच्छा एक थोड़ा से और पहले बात कर लेते हैं फिर उसके बाद इसके ऊपर आएंगे कि और क्या चीज थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे किए काम। एक तो ये किया कि हम सूरह अनफाल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वहां माले गनीमत था और माले गनीमत की डिस्ट्रीब्यूशन का अभी कोई भी कानून नहीं आया था। पहली उम्मतों में माले गनीमत को क्या किया जाता था, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। वो माले गनीमत उनके लिए हराम था, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह ताला ने माले गनीमत को हलाल किया। और इस वजह से अब ये नहीं समझ आ रही थी कि इसको तकसीम कैसे किया जाए। सहाबा में इस बारे में इख्तलाफ भी हो गया, जो हम सूरह अनफाल में पढ़ भी चुके हैं। और सूरह अनफाल उतरी बदर के वहां पे, उस मौके पे उतरी है जो 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे रहे हैं। तो उन 3 दिनों में, एक तो ये जब आ रहे हैं और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक्त लेके इन लोगों को गए और वहां पे जो बदर में कुएं में लोग थे उनसे खिताब फरमाया। और भी क्या हुआ कि जो ये माले गनीमत की तकसीम थी, ये कैसे तकसीम हो गई, इसके ऊपर भी आयात उतर आई और वो आयतें उतरी हैं और माले गनीमत तकसीम हुआ। लेकिन आप ये देखें कि हजरत अब्दुल्ला बिन सामित से मरवी है कि अल्लाह के रसूल ने माले गनीमत मुसलमान मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम किया। असल में मैदान जंग में अल्लाह के रसूल ने किबला की तरफ चेहरा मुबारक करके हाथ फैला के दुआ मांगी थी, कि जो अल्लाह ताला ने कबूल की। और वो क्या दुआ थी कि या अल्लाह, ये लोग इस तरह से बिल्कुल बेयारो मददगार अपने घरों से निकले हैं, बिल्कुल इनके पास ना कोई सामान है ना कुछ है, ऐ अल्लाह ये भूखे हैं इन्हें सैर फरमा, ये पैदल है इनको सवारियां नसीब फरमा, ये बेलिबास है इनको लिबास नसीब फरमा। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल की दुआ कबूल फरमाई। जब सहाबा बदर से फातिहाना वापस हुए, हर एक के पास माले गनीमत अल्लाह ताला ने दुनिया भी दे दी। जब अल्लाह की खातिर निकले तो अल्लाह ने दुनिया ली नहीं, वो भी दे दी। कैसे आए थे, किस हाल में, किसी पास एक डंडा है, किसी के पास एक तीर है, किसी पास एक तलवार है। अब वापस जा रहे हैं तो अब देखें इनके पास, सुभान अल्लाह, यानी कहा जाता है कि मुशरिकीन के छोड़े हुए राशन, वो खाना पीना भी था, जूते भी पहन लिए थे उनके, उनकी सवारियों पर सवार भी पलट रहे थे, जो बदन से नंगे थे उनके ऊपर भी चादरें थी और कपड़े थे, और इस तरह से ये लदे हुए वापस आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये भी अता फरमाया माले गनीमत। और माले गनीमत आपको पता है 1/5 हिस्सा सूरह अनफाल की शुरू की आयतों में है कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए। वापस मदीना आकर चंद एक लोगों को जो बदर में शरीक नहीं हुए थे, इसके बावजूद के वो बदर में शरीक नहीं हुए थे, उनको भी माले गनीमत दिया गया। उनमें एक हैं हजरत उस्मान। उनको माले गनीमत क्यों दिया गया, इसलिए कि उनकी बीवी हजरत रुकैया, कौन है ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, वो सख्त बीमार थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को उनके पास पीछे रुकने का हुक्म दिया था, वो वहीं रहे थे, तो इसलिए उनको भी माने गनीमत में से हिस्सा दिया गया। इसी तरह एक और सहाबी हैं अबू लुबाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मदीना का आमिल बनाया था, तो उनको भी इसमें से हिस्सा दिया गया। इसी तरह एक और सहाबी हैं अबू उमामा बिन सालबा, उनकी वालदा बीमार थी, उनकी देखभाल के लिए घर में कोई नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम अपनी वालदा की देखभाल के लिए रुक जाओ, तो अबू उमामा ने बल्कि अपने मामू से कहा कि आप मेरी वालदा की तीमारदारी के लिए रुक जाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बेटा ये अपनी माँ के लिए रुकेगा। और जहां पे आप सोचें एक एक बंदे की जरूरत है, वहां पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की खिदमत के लिए बेटे को यही हुक्म दिया कि जिहाद पे जाने से भी बेहतर है कि पीछे अपनी माँ की खिदमत करें। अबू मामा की वालदा हालांकि इस दौरान फौत भी हो गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस तशरीफ लाए तो वापसी पे उनकी कब्र पे तशरीफ ले गए और वहां नमाज जनाजा पढ़ी, और इनको भी माले गनीमत में से हिस्सा दिया, क्योंकि ये भी तैयार थे जाने के लिए लेकिन अपनी वालदा की उस बीमारी की वजह से नहीं जा सके। तो इससे भी ये भी हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए, अपने एक एक सहाबी की खबर गिरी रखते थे, किसी को इग्नोर नहीं है, किसी को वो नहीं है कि अब मेरे पास कहाँ इतना वक्त है कि इसका पूछूं, हर एक का ख्याल रखना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन क्वालिटी है। फिर अब ये क्या हुआ, किस तरह से ये एक और, हाँ, नंबर 2 एक और चीज हुई थी जो मदीना पहुंचते हैं, हम मदीना की बात अभी करते हैं कि किस तरह से ये फतह की बशारत वहां पे पहुंची, लेकिन उससे पहले एक तो माले गनीमत की बात हो गई, दूसरे अब कुछ कैदी भी तो थे ना साथ। अब कैदियों का क्या बना? अब कैदियों के बारे में जब हम देखते हैं तो वैसे तो तमाम कैदियों को लाया गया और उनके साथ जो सलूक किया गया वो भी इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, मगर दो कैदी ऐसे थे जिनको कत्ल किया गया। एक तो आपको उमैया बिन खल्फ का तो पता चल गया ना कि हजरत बिलाल ने तो उसको अंसारी अपने भाइयों को बुला के और फिर उसका तो मामला खत्म ही हो गया था वहां पे, लेकिन और भी दो कैदी ऐसे थे कि जिनको कत्ल किया गया था, क्योंकि ये सिर्फ कैदी नहीं थे बल्कि ये बहुत बड़े मुजरिम थे। उनमें एक का नाम, ये दो आपने नाम याद रखने, एक था नजर बिन हारिस। नजर बिन हारिस कुछ याद पड़ता है आपको कौन था? शाबाश, जो गाने वालियां और वो लौंडियां और वो किस्से कहानियां लेकर आया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाने के लिए बैठते थे तो ये उनको आके कहता था कि इससे बेहतर तो मेरे पास कलाम है, क्योंकि ये बाहर जगहों पे, जिसको कहते ना कि बाहर के मुल्कों में घूम फिर के आया था, दुनिया इसने घूमी भी थी और जगहों पे रहा भी हुआ था, तो वहां से इस तरह के किस्से ले आया था लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जिस तरह हम सोचें कि आज ड्रामे हैं, फिल्में हैं, तो वो कहता था कि भाई ये आके देखो ना, ये क्या, वो कहता था ये असातीरुल अवलीन है, ये जो कुरान में आता है ना कि असातीरुल अवलीन, ये क्या पुरानों के किस्से, पुरानी कहानियां, स्टोरीज, ये हिस्ट्री की स्टोरीज, इनका क्या करना है? आओ मैं तुम्हें बादशाहों के किस्से और इनके किस्से और ये सब किस्से उनको सुनाने के लिए, उसके पास किस्सा खवान भी थे और लौंडियां भी थी, जिसको देखता था कि दीन की तरफ जरा मायल हो रहा है उसके पीछे एक लौंडी छोड़ देता था कि जाओ इसको गाना बजाना और शराब और इन चीजों में मगन रखो, ये इस्लाम की तरफ ना जाए। तो इस कदर ज्यादा ये बड़ा मुजरिम था। और ये, और दूसरा कुछ किसी को पता है कि दूसरा कौन सा मुजरिम था? उकबा बिन अबी मुआइत। हाँ, उकबा बिन अबी मुआइत, वो कौन था? बहुत इसने तंग किया था। ओ शाबाश, ओजड़ी जिसने लाके सर पे रखी थी ना, कि जब सारे हंस रहे थे सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के लिए कह रहे थे ना, जब के कौन लेकर जाएगा और वो ओजड़ी लेकर आएगा, जो ऊंट अभी जिबा हुआ है उसकी ओजड़ी उठा के लाके डालेगा, कोई भी नहीं जाना चाहता था, ओजड़ी गंदी सी चीज घिन आती है, तो ये खुद गया और इसने उठाई, किसी नौकर को भी नहीं कहा, गुलाम को भी नहीं कहा, खुद उठा के लेकर आया, इतनी इसको दुश्मनी थी। और एक दफा तो चादर गर्दन में डाल के इतनी दबाई कि जैसे मार देगा, यानी इसने, यानी खत्म करने की भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोशिश की। और उस वक्त कौन दौड़ी दौड़ी आई थी? हजरत फातिमा दौड़ी दौड़ी आई थी और उन्होंने आके वो ओजड़ी उठाई थी, और जिस वक्त इसने गर्दन में चादर डाल के इतनी जोर से दबाया था, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक आए थे और फरमाया था क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इस वजह से मारते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, सिर्फ इस वजह से? तो ये दो लोग थे कि जिनको कत्ल किया गया, ये जब बदर के कुएं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सारी बात कर ली थी और उसके बाद आगे गए, तो यहाँ पे बताया भी गया है कि कौन सा वो मकाम था जहां पे ये हुआ था, ये हम आगे पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये बात भी कर लेते हैं। इधर अहले मदीना की खुशखबरी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कासिद रवाना फरमाए, और एक अब्दुल्ला बिन रवाहा बलाई मदीना की तरफ और दूसरे जैद बिन हारिसा जीरी मदीना की तरफ, यानी दो लोगों को दौड़ाया कि ये खुशखबरी जाके दें। इस दौरान यहूद ने झूठे प्रोपेगेंडे करके मदीना में हलचल मचा रखी थी, यानी पीछे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हुए थे तो उनको फिर भी चैन नहीं आया और उन्होंने पीछे भी फिर भी अपनी शरारतें जारी रखी और वहां पे ऐसी ऐसी खबरें और अफवाहें उड़ा के रखी कि जिससे कि लोग बेचैन रहे। ये खबर भी हत्ता के उड़ा दी थी कि नाउज़ु बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया। एक मुनाफिक था, मुनाफिक क्या, अभी मुनाफिकत तो शुरू नहीं हुई थी, मगर ऐसा बंदा जो कि अभी मुसलमान नहीं हुआ था लेकिन जाहिर है जब मुसलमान हुआ तो वो मुनाफिक ही बना, तो उसने हजरत जैद बिन हारिसा को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी कसवा पे आते हुए देखा तो फौरन बोल पड़ा वाकई मोहम्मद तो कत्ल कर दिए गए, ये देखो इन्हीं की ऊंटनी पे सवार आ रहा है, हम इसे पहचानते हैं, ये जैद बिन हारिसा है, शिकस्त खा के भागा आ रहा है और इस कदर मरऊब है कि इसकी समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहा है, यानी उन्होंने भी यकीन नहीं किया। जब वो, उन्होंने आके हजरत जैद बिन हारिसा ने आके ये खबर सुनाई है तो इन लोगों ने भी यकीन नहीं किया कि वहां पे वाकई ही मुसलमानों को फतह हो गई, और उल्टा वो इस चीज को भी वो करते रहे कि ये हो ही नहीं सकता, ये इसका दिमाग खराब हो गया, असल में शिकस्त हो गई है ना, तो इस वजह से ये आके ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा। क्योंकि उन्होंने भी आके जब बताया था कि इस तरह हो गया और इतने लोग मारे गए हैं और इतने इतने बड़े सरदार मारे गए, तो उनको जाहिर है जो मुनाफिकीन थे और जो यहूद थे जो पहले से ही दुश्मनी रखते थे, उनको इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। तो बहरहाल जब दोनों कासिद पहुंचे तो मुसलमानों ने उनको घेर लिया, उनसे तफसीलात सुनने लगे, हत्ता कि उन्हें बखूबी मालूम हो गया कि मुसलमानों को अजीम शान और तारीखी फतह हासिल हुई है। और इसमें यह भी आता है कि जब फतह की खुशखबरी लेकर ये पहुंचे हैं वापस, तो अल्लाह अकबर कहते हुए पहुंचे और उनके नाम बोल रहे थे जो काफिर मारे गए थे, और ये इतनी बड़ी खबर थी, इतनी लंबी लिस्ट थी काफिरों की, फलां भी मारा गया, क्योंकि ये लोग तो सब जानते थे कि कौन कौन है ये। तो मुसलमान ये सुन के इतने खुश हुए, मगर मुनाफिकीन जो थे जो बाद में मुनाफिक बने, इनके मुंह लटक गए और ये आपस में सरगोशियां करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, असल में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मारे गए हैं और ये ऐसे ही आके हमें कह रहा है और ऐसे हो रहा है। और मुनाफिकीन का हमेशा से आप देखें तरीका यही रहा है कि उन्होंने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जिसके अंदर इस्लाम को तकलीफ और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की ना कोशिश की हो। लेकिन सुबहान अल्लाह, एक बहुत अहम बात कि जिस वक्त वो आके ये खबर दे रहे हैं और अल्लाह अकबर कहते हुए दाखिल हो रहे हैं, उस वक्त बकी में हजरत उस्मान अपनी बीवी को दफना के उनके ऊपर मट्टी डाल के अभी फारिग हुआ, और उधर वो आवाज आई है कि फतह मिल गई है मुसलमान। सुबहान अल्लाह, मैं कहती हूँ देखो एक इंतहाई खुशी का दिन जो कितने दिनों बाद मुसलमानों की जिंदगी में आया, कितनी बड़ी बात थी कि एक फतह मिलना, और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वो वफात पा गई। अगर कोई और इंसान हो तो शायद वो इतने गिले शिकवे करे कि हाय हमारी खुशी भी मुकम्मल नहीं हुई और अल्लाह ने हमारे साथ ये क्या किया और एक दिन और डिले हो जाता, इनकी मौत का क्या फर्क पड़ता था या क्या। लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया, देखो इस दुनिया में जहां पे खुशी है वहां पे गम भी है, इस दुनिया की कोई खुशी मुकम्मल नहीं है, कहीं आप पे से बाहर ना हो जाना, कहीं ये ना सोच लेना यही अल्टीमेट है, बस जहां पे खुशी आती है साथ ही कोई गम भी लगा, और यही इस दुनिया की जिंदगी का नाम है, खुशियां और गम साथ साथ है। अल्टीमेट खुशी सिर्फ कहाँ है, जन्नत में, जहां की खुशी कभी खत्म नहीं होगी और जहां पे कोई गम नहीं होगा, पर यहां की खुशियों को कभी पायदार ना समझो, आज अप है तो कल डाउन है, ये साथ साथ है। जब नबी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर और कोई क्या अपने आप को कह सकता है, कितनी बड़ी एक शिकायत हो सकती थी। अल्लाह ताला माफ फरमाए, हमारे जर्फ छोटे हैं ना, हमारे जर्फ बहुत छोटे हैं, इसीलिए जब वाकयात आते हैं तो उसी तरह हम अंदर से निकलते हैं, हमारे जो फिक्रे होते हैं वो वैसे ही निकलते हैं, आ ये क्यों हो गया, हाँ और ये क्यों हो गया हमारे साथ, ऐसा ही हुआ। बिल्कुल, दूसरों के ऊपर भी करते हैं बिल्कुल। और देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के साथ हो गया तो कितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी एक तरफ फातिह बन के आ रहे हैं, पहली पहली खुशी है इतने दिनों के बाद, और एक तरफ ये है सदमा। बिल्कुल, सारी जिंदगी। और मैं तो लोगों को ये कहती हूँ कि अगर आपने सीखना है ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इतनी रहनुमाई है कि आपकी हर जिंदगी के मौके के लिए वहां रहनुमाई मौजूद है, कि ऐसे हालात में भी कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, इस वजह से कोई ऐसे उसमें नहीं चले गए कि हाई ये क्या हो गया, मैं अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए निकला, पीछे अल्लाह ने मेरी बेटी ले ली, और आपके बच्चे को कांटा भी चुभ जाए ना, जबकि आप अल्लाह के दीन के लिए कोई खिदमत कर रहे हैं तो आप कहते हैं लो जी हम तो अल्लाह के दीन के लिए अच्छे निकले, हमारे पीछे हमारे बच्चों का भी देखो ऐसा हो गया, और मेरे घर का देखो आज क्या हाल हो गया, क्योंकि मैं क्लासें जो लेती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ती जो हूँ, क्योंकि मैं कुरान से जो जुड़ी हुई, तो देखो मेरा कितना गिला शिकवा कर, और मेरे नबी किस हालात में वहां गए लड़ने के लिए, अब इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वापिस आ रहे हैं, अभी भी खुशी मुकम्मल नहीं कि आगे ये सदमा मौजूद है। अल्लाह हू अकबर। तो और इधर ये दुश्मन के यहूदियों ने पीछे प्रोपोगंडास किए हैं, इसलिए जब फतह की खबर पहुंची तो हर तरफ मुसर्रत और शादमानी की लहर दौड़ गई। मदीना के दरोबाम तहलील और तकबीर के नारों से गूंज उठे, और सरबर आवर्दा मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने के लिए बदर के रास्ते में निकल पड़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की राह में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुसरते इलाही का ताज पहने हुए मदीना के लिए रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माले गनीमत और कैदी भी थे। अब समझ आ गई ना आपको दोनों का क्या हुआ? माले गनीमत है जो तकसीम हो चुका है, कैदी हैं रास्ते में जिनको दो को कत्ल किया गया, बाकी जो कैदी हैं वो साथ लेकर आ रहे हैं। वादी सफरा के करीब पहुंचे तो तकसीम गनीमत का हुक्म नाजिल हुआ। अब समझ आ गई सूरह अनफाल की जो आयत आयत कहाँ नाजिल हुई? अभी रास्ते में है, अभी पहुंचे नहीं है मदीना, वादी सफरा में नाजिल हुई। चुनाचे आपने खम्स निकालकर बाकी माले गनीमत गाजियों पर तकसीम फरमा दिया। फिर वादी सफरा में पहुंचकर नजर बिन हारिस को कत्ल करने का हुक्म दिया, और हजरत अली बिन अबी तालिब ने उसकी गर्दन उड़ा दी। इसके बाद अर्क जबिया पहुंचे तो उकबा बिन अबी मुईद को कत्ल करने का हुक्म दिया, और हजरत आसिम बिन साबित अंसारी ने, और बाज रिवायत में कहा जाता है कि हजरत अली बिन अबी तालिब ने उसकी गर्दन मारी। और इसके अंदर भी ये आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अब्दुल्ला बिन अबी मुआइद को कत्ल करने का हुक्म दिया था, तो इसने आगे से कहा था कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग आग। और फिर इसकी गर्दन उड़ा दी गई थी। तो यानी इसका मतलब क्या है? यानी कि तेरे बच्चों को तूने जिस रास्ते पर डाल दिया है, अगर वो उसी रास्ते पे चलते रहे तो उनके लिए क्या है, उनको कौन देखेगा? आग ही तो तू उनके लिए छोड़ के जा रहा अस्तग़फिरुल्लाह। और इसको देखो, अब अपने बच्चों की याद आ गई। उस वक्त किसी के बच्चों का ख्याल नहीं था जब ओजड़ी लाके सर पे रख रहा था, जब गर्दन ऐसे चादर से दबा रहा था, लेकिन ये अब इस वक्त बैग कर रहा था अपनी लाइफ के लिए। अबू जहल जो था ना, वो तकब्बुर वाला था, उसने कहा मेरी गर्दन भी काटना तो यहां से नीचे से के पता चले सरदार की गर्दन, उसमें तकब्बुर था। इसमें बुजदिली, इतनी बुजदिली कि जो है ना अब माफिया मांग रहा, और अब इस वक्त रहम की अपील कर रहा। तो क्या इनको छोड़ देना चाहिए था? देखें आप ये याद रखें एक बात, आगे भी ये बात आ रही है, थोड़ा कैदियों के उसके ऊपर भी ये बात आएगी कि बाज हालात के अंदर बदला लेना वो भी जरूरी है। अगर ये बात आम कर दी जाए कि जो मर्जी करोगे हमेशा यहां से माफी माफी है, माफी मांग माफी है, तो मुझे बताएं हार कोई फिर एडवांटेज ही लेगा? वो कहेगा जो मर्जी करो, इनका कहना तो माफी कर देना। इसलिए जालिमों को पता होना चाहिए कि नहीं, अगर जुल्म की इस इंतहा को पहुंच जाएंगे तो फिर यहाँ पे बदला भी है।
ये सारे सरदार रूट कॉज थे ना?
जी बिल्कुल। और ये देखें, ये कुफर के सरदार थे, कुफर के इमाम थे, शैतानों के भी शैतान, कुरैश की शयातीन थे ये। तो इनसे अगर ना ये मामला किया जाता तो आगे और जरर पहुंचाते, आगे दोबारा मिलके आ जाते लोगों के साथ, और फिर यही करते। तो इसलिए इनके साथ बदला लेना जरूरी था। तो बास हालात में याद रखें, बदला लेने में ही आफियत होती है। सरबर आवर्दा मुसलमान, यानी जो बड़े बड़े थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने के लिए निकले, मकाम रौहा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई, और वहां से मदीना तक उन्होंने आपकी रफाकत क़यादत में सफर तय किया। और इस तरह आप मदीना में यूं मुजफ्फर और मंसूर दाखिल हुए कि हर दुश्मन पर आपकी धाक बैठ चुकी थी, और इसकी वजह से बहुत से लोग हल्का बगोश इस्लाम भी हुए, बहुत से लोग मुसलमान हो गए। यानी अब हमें पता है कि कितनी कौन सी, हमने शुरू में पढ़ा था ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे और मीसाक किए थे, मुआहदे किए थे, तो कौन कौन लोग थे? यहूद थे, मुसलमानों के साथ भी मुआहदे हुआ था कि क्या उनको किस तरह से रहना है, और तीसरे कौन थे? मुशरिकीन, यहाँ पे भी मुशरिक थे। लेकिन इस वक्त जब बदर हुई तो मुशरिक, जो मुशरिक यहाँ पे रहते थे अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक फोर्स है और ये ही गालिब आएंगे। जब इन्होंने इतनी बड़ी फोर्स को शिकस्त दे दी तो अब तो बेहतर यही है कि हम भी मुसलमान हो जाए। ये टाइम था कि याद रखें, बदर के बाद मुनाफिकत पैदा हुई, मुशरिक खत्म हो गए, منافقت نے جنم لے لیا۔ مشرکوں کو کسی نے کہا نہیں کہ آپ اسلام لے کر آؤ، یاد رکھیں اتنی دیر میں ابھی تک کسی نے زور زبردستی نہیں کیا، جیسے آج ہم لوگ کے طریقے ہیں کہ بھئی اچھا مسلمان نہیں ہے تو اس کی گردن ہی ختم کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ رہ رہے تھے، اور ابھی بھی ایک آدمی کا آپ کو احد میں جا کے پتا چلتا ہے کہ وہ وہاں پہ اسلام لے کر آیا۔ جسٹ این اس وقت انشاءاللہ آگے جب پڑھیں گے تو کوئی اکا دکا کوئی رہ گئے ہوں گے، لیکن ادروائز سب مسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو جو نہیں مسلمان ہوئے ان کو اب ختم کرو، ان تک تو پیغام پہنچ گیا، ایسا نہیں تھا۔ اس وقت یہ اسلام لے کر آ رہے ہیں وتھ فری ول، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، پیغام ان تک پہنچ چکا۔ تو اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا، اور آپ دیکھیں پھر اس کے بعد یہی عبداللہ بن ابی ہے نا کہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا اسلام کو نقصان پہنچایا تھا۔ احد میں اس نے کیا کیا تھا وہ بھی آپ کو آگے انشاءاللہ جب احد کا پڑھیں گے تو آئے گا، مگر یہ قبیلہ خزرج کا سمجھ لے ایک سردار تھا، ایک بڑا آدمی تھا، اور اس کو یہ تھا کہ مدینہ کی جو بادشاہت ہے، اوس اور خزرج کی جو بہت کمبائن ان کی جو بادشاہت ہوگی وہ اس کو دی جائے گی، وہ سلیکٹڈ، اور اس میں اس کا تاج بھی بننے کے لیے چلا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اس کی ساری بادشاہت جاتی رہی۔ دیکھیں وہ جو حسد اور گرج اندر ہوتا ہے نا، جو کینہ، وہ دیکھیں کیسے پھر آتا ہے کہ مسلمان ہو بھی گیا، کلمہ پڑھ بھی لیا، لیکن یہ وہ آدمی تھا جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ جب ابھی بدر نہیں ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور گدے پر سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اسامہ بن زید کو بٹھایا ہوا تھا۔ یہی اسامہ بتاتے ہیں کہ راستے میں ایک جگہ یہ عبداللہ بن ابی جو تھا اپنی مجلس جمائے بیٹھا تھا، اور اس کے ارد گرد اس کے قبیلے کے لوگ بھی تھے۔ کون سے قبیلے سے تھا؟ خزرج قبیلے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اسے بہت برا لگا اور اس نے منہ پھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچے اور سلام کیا تو تھوڑی دیر کے لیے رکے اور قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ کے سنایا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے، دیکھو سبحان اللہ کیسے کہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کے سنایا اور اللہ کی طرف دعوت دی۔ ابھی کیونکہ یہ تو ابھی مشرک ہی تھے تو ان کو دعوت دی اور اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، اس کے غضب سے ڈرایا۔ اسامہ کہتے ہیں عبداللہ بن ابی جو ہے بس دم سادھے بیٹھا رہا اور اس نے کوئی بات نہیں کی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر چلنے لگے تو بڑے گستاخانہ اور بازاری انداز میں منہ پھاڑ کے بولا، اے فلاں تیرا یہ بات کرنے کا ڈھنگ ٹھیک نہیں ہے، اپنے گھر بیٹھ، جو کوئی تیرے پاس آئے گا بس اس کو اپنی بات سنا دینا، اور جو تیرے پاس نہ آئے اس کو تنگ نہ کیا کر، اور اس کے گھر میں آ کر ایسی دعوت نہ سنا کہ جو اس کو ناگوار گزرے۔ یعنی اس کو اتنا برا لگا۔ اب اس کے جملوں پہ اگر غور کریں، ایک ایک لفظ جیسے زہر ٹپک رہا ہو، اور اللہ اکبر۔ یہ نہیں، یہ اسلام لانے سے پہلے، ابھی بدر نہیں ہوئی، اب اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے، ان کی غیرت، ان کو بڑی غیرت آئی تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ آئے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائی ہیں، آپ ہمارے گھروں میں، ہماری مجلسوں میں آئے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہی کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں سربلندی عطا کی ہے، آپ ہی کے ذریعے سے ہدایت عطا کی ہے۔ یعنی فوراً انہوں نے جواب دیا، مگر اس کے اندر اتنا سخت بغض بھرا ہوا تھا نا کہ یہ ہیں جنہوں نے میرا یہ ٹائٹل چھین لیا، میری کرسی انہوں نے لے لی، میری سیٹ جاتی رہی۔ انسان سوچے کہ عبداللہ بن ابی کو تو آج برا کہتے ہو، لیکن آپ خود سوچو کہ کسی جگہ آپ نے سلیکٹ ہونا تھا، آپ کو یہ کرسی ملنی تھی، آپ کو پریزیڈنٹ مسجد کا بنانا تھا، آپ کو کسی جگہ پہ سلیکشن ہونی تھی اور کسی اور کو مل گئی، پھر جو اندر حسد کی اور بوس کی، تو یاد کیا کریں اس وقت کہ عبداللہ بن ابی کو کس نے رئیس المنافقین بنایا، انہی جذبات نے، انہی گرجز نے، اس کو کیوں مل گئی، مجھے ملنی تھی یہ، تو یہ حسد۔ اور جب اس نے دیکھا کہ بدر ہوئی ہے اور ہوا کا رخ ہی بدل گیا، تب وہ اندر اندر تو اسلام کا دشمن رہا، لیکن ظاہری بات ہے اب وہ کیا کر سکتا تھا، کچھ اور چارہ نہیں تھا، تو اب اسلام تو لے آیا، لیکن یہودیوں کے ساتھ اس کے بڑے روابط تھے اور بڑے وہ تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ پہلے خود کھڑا ہو جاتا تھا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ ابھی کسی نے مائک پکڑنا وہ اسے پہلے ہی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہم بھی بتائیں کہ ہماری بھی کیا اہمیت ہے۔ تو کہتا تھا، لوگوں یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت دی ہے، इनकी मदद करो, इनको कुव्वत पहुंचाओ, इनकी बात सुनो और मानो। इसके बाद बैठ जाता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खुतबा देते थे। अल्लाह हु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अल्लाह ताला मुनाफ़िकत से महफूज रखे। तो ये इस कदर बदतरीन दुश्मन था इस्लाम का कि उसने आखिर तक, आखिर वक्त तक तौबा नहीं की थी और इसी मुनाफ़िकत पे मरा था। कैदियों का कजिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच चुके तो आपने कैदियों के बारे में मशवरा किया। अब इन कैदियों का क्या करना चाहिए, ये भी तो एक मशवरा था ना, कि क्योंकि आज से पहले कभी कोई कैदी नहीं बना था। पहली तो जंग थी ना, माले गनीमत कभी तकसीम हुआ ना, कैदियों का कोई मामला आया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिदिया लेने की राय दी और हजरत उमर की राय ये थी कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। अब ये देखें, दोनों सहाबी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनको कहते हैं दो वजीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मशवरा किया। हजरत उमर फर्स की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर, हजरत अली और हजरत उमर से खुद से भी मशवरा किया कि इन कैदियों का क्या किया जाए। तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, हम एक दूसरे के चचा जाद हैं, रिश्तेदार हैं, लिहाजा मेरी राय तो यह है कि आप इनसे फिदिया ले लें। इससे फायदा यह होगा कि इस माल से काफरों के मुकाबले हमें हमारी दिफाई कुव्वत भी मजबूत होगी। दूसरा फायदा यह है कि मुमकिन है अल्लाह इन कैदियों को इस्लाम की तरफ हिदायत दे दे। और वाकई उनकी बात सच्ची निकली, वाकई बहुत सारे कैदी मुसलमान हो गए थे। अब अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर से पूछा, ए खताब के बेटे, तुम्हारी राय क्या है? हजरत उमर ने सिद्दीक अकबर की राय की नफी करते हुए फरमाया, नहीं अल्लाह की कसम है अल्लाह के रसूल, मेरी वो राय नहीं है जो अबू बकर की है। मेरी राय तो यह है कि आप इन कैदियों को हमारे सुपुर्द करें ताकि हम इनकी गर्दनें उड़ा दें। अली का भाई अकील है ना, तो अली का भाई अकील उसके सुपुर्द किया जाए, वो इसकी गर्दन उड़ाए। ये बाद में मुसलमान हो गए थे अकील, लेकिन देखें उन्होंने कहा कि नहीं, भाई को दो, वो आज इस्लाम का सबूत दे, पता चलेगा कौन अल्लाह का वफा है। सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते थे तो देखें हर सहाबी अपनी अपनी राय देते थे, और ये भी नहीं कि अच्छा मैं, उसने ये कहा तो मैं भी यही कहता हूँ, ताकि जो है ना ये ना लगे कि मैं ज्यादा सख्त हूँ। और वो मुखलिस राय देते थे, जो उनके आता था कि मुखलिसाना मशवरा, जो उनको समझ में आता था। और फिर माइंड नहीं करते थे कि मेरा तो मशवरा कबूल ही नहीं किया, यहाँ पे मेरी क्या अहमियत है। जैसे अब्दुल्ला बिन उबई ओहद में जो करेगा वो फिर इसी चीज के ऊपर आएगा ना कि मेरा मशवरा तो माना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फरमाया और वो उसकी गर्दन उड़ाए, और मेरे फलां अजीज जो उनको मेरे सपोर्ट किया जाए मैं उसकी गर्दन मारता हूँ। ये लोग कुफर के सरदार हैं और कुफर के रुआसा हैं। हजरत उमर कहते हैं, हजरत अबूबकर सिद्दीक ने जो मशवरा दिया अल्लाह के नबी का रुझान उधर हो गया, और जो मैंने मशवरा दिया उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुझान नहीं हुआ। क्योंकि ये तफसील यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। जब अगला दिन हुआ और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे थे और अबूबकर सिद्दीक भी रो रहे थे। तो मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मुझे बताएं क्या वजह है कि आप भी रो रहे हैं और आपका साथी भी रो रहा है। अगर मुझे रोने की वजह मालूम हो जाए तो मैं भी आंसू बहाऊं, और अगर मुझे आंसू बहाने की वजह ना भी मिले तो मैं इस वजह से आंसू बहाना शुरू कर दूं कि आप दोनों रो रहे हैं। इस पर अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, फिदिया कबूल करने की वजह से जो चीज तुम्हारे साथियों के सामने पेश की गई है मैं इस वजह से रो रहा हूँ। यानी अल्लाह ताला ने आयात उतार दी, सूरह अनफाल की 68 आयात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर अजाब इस दरख्त से भी ज्यादा करीब आ लगा था। यानी हजरत उमर की राय ज्यादा बेहतर थी, अल्लाह ताला को ये ज्यादा मंजूर था कि इस वक्त मुसलमान जो है कमजोर है। कमजोर का किसी को माफ कर देना वो तो बड़ी बात नहीं होती, असल बात है जब आप ताकतवर होते हैं तब माफ करते हैं। अभी तो आपका माफ करना ऐसे ही समझा जाएगा कि ये तो खुद इन्होंने माफी करना था, ये क्या खुद चीज है, हाँ तो क्या कर सकते थे। तो अभी आप इस्टेब्लिश नहीं हुए हुए, और फिर ये अब अगर चले जाएंगे तो ये वापस आएंगे दोबारा आपसे जंग करने के लिए, तो इसलिए इनको इस वक्त छोड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। तो ये फिर राय हजरत उमर की अल्लाह के नजदीक वो ज्यादा बेहतर थी, और इसकी वजह से ये आयात भी नाजिल हुई। लेकिन एनी हाउ अब बात हो चुकी थी और ये मामला तय पा चुका था कि अब फिदिया लिया जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुक में देखें, फिर आप फिदिया लेना तय किया। ये फिदिया 4,000 से 3,000 और कम अज कम 1,000 दिरहम था तक था। 4,000 दिरहम हजरत अब्बास के रखे गए थे, उनके बहुत ज्यादा दिरहम रखे गए थे। बल्कि एक जगह पे ये भी आता है कि हजरत अब्बास के लिए किसी ने, जब जायरा लोगों को तो पता था, एक अंसारी जो उनको पकड़ के लेकर आया था, मैंने आपको बताया था ना कि कमजोर सा अंसारी था जो उनको पकड़ के लेकर आया था। तो जब उस हर एक कैदी को जिस जिसने पकड़ा था उसके घर में उनको कहा गया था कि आप इसकी देखभाल करेंगे। वहां पे जेलें या कुछ तो होती नहीं थी, लेकर आए मस्जिद नबी में और इस तरह तकसीम कर दिया, जो जो जिसको पकड़ के लाया। तो उन्होंने आके कहा अंसारी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं चाहता हूँ कि हदियतन आपको ये दे दूं, कि इनका फिदिया ना लिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इनके तो एक पाई भी ना छोड़ना, एक पाई भी ना छोड़ना, इनसे तो एक एक माल लिया जाए। तो ये भी पता चलता है कि हजरत अब्बास ने फिर उस वक्त फरमाया था कि या रसूलल्लाह मेरे पास तो 4,000 दिरहम नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो उम्मुल फजल से जब तुम बात कर रहे थे, अपनी बीवी से बात कर रहे थे और कह रहे थे, जब मक्का में निकलने लगे थे और कह रहे थे कि अगर मैं मर गया तो फिर ये यहाँ यहाँ ये माल पड़ा हुआ है, फिर ये इस बेटे को देना, ये इतना इसको देना, ये इतना इसको देना। तो उन्होंने उस वक्त कहा अशहदुन्ना मुहम्मद रसूल, कि वाकई ये बात सिवाय नबी की और किसी को मालूम नहीं हो सकती थी। और पहले कह रहे थे कि मैं तो मुसलमान ही हूँ, मेरे से क्यों ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है ईमान अभी अंदर वैसे दाखिल ना हुआ होगा, मगर ये जब बात देखी अपने सामने तो वाकई मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल, कि रसूल के सिवा ये बात जानना किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि यानी हजरत अब्बास से भी फिदिया लिया गया, और बल्कि उनसे कहा गया कि आप अपने भतीजों का, उनके दो भतीजे भी इनके साथ आए थे, यानी अकील और नौफल, इन दोनों का भी आप फिदिया दें, ये आपके भतीजे हैं और आप मालदार हैं। तो यहां तक तो 4,000 भी लिया गया, 3,000 भी और 1,000 भी, ये सबसे डिफरेंट क्यों लिया गया? शाबाश, उनकी माली हैसियत जो थी हर एक की उसके मुताबिक लिया गया, यानी जो जितना मालदार था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी तो पता था, मुहाजरीन को तो पता था कि वहां पे किसकी वैल्यू कितनी थी। और बाज ऐसे भी थे जो कि इतने गरीब थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उनको ऐसे भी जाने दिया गया। और बाज के लिए ये भी हुआ कि और इनमें से जो लिखना पढ़ना जानते थे उनका फिदिया ये करार दिया गया कि वो 10-10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे। बाज कैदियों पर एहसान किया गया और इन्हें फिदिया लिए बगैर ही रिहा कर दिया गया। समझ आई बात? यानी जिनको पढ़ना लिखना आता था, तो अगर उनके पास और कुछ नहीं है तो पढ़ना लिखना ही सिखा दो। इससे आपको पता चला, जो लोग कहते हैं कि गैर मुस्लिमों से नहीं पढ़ना चाहिए, काफरों से नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ पे आपको क्या मिलता है? ये काफिर है और उनसे अपने बच्चों को तालीम दिलाई जा रही है। असल बात इल्म की है, इल्म हासिल करो। और उस जमाने में तो इल्म की कोई ऐसी कोई, जैसे आज है इल्म का रिवाज या इल्म की अहमियत, वो तो वहां पे उतनी कोई ऐसी अहमियत नहीं थी, कोई बड़ा पढ़ा लिखा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इल्म की कितनी अहमियत थी कि उन्होंने उस वक्त भी इस चीज को प्रेफर किया कि वो तालीम दे दें इन बच्चों को। अच्छा, उस वक्त भी एक ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कैदियों के बारे में सहाबा कराम को बाकायदा ताकीद की थी कि अपने कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना। इब्ने इसहाक की एक रिवायत में आता है कि अबू अजीज जो मुसब बिन उमैर के भाई थे, और उनको भी किसी अंसार के घरों घर में थे वो, जो उनको कैद करके लाए थे, तो उनके घर में ही जाहिर उनके हवाले किया गया था। तो वो बताते हैं कि मुझे खाने के लिए ये लोग गोश्त और रोटी दिया करते थे, और खुद मैं देखता था कि खजूर और पानी उस पे गुजारा कर रहे। तो कहता है कि मुझे शर्म आती थी और मैं रोटी रख देता था उनकी तरफ, तो वो नहीं लेते थे और वापस मुझे मेरे सामने रख देते थे कि नहीं, हमारे नबी का हुक्म है कि कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना है। मुझे बताए आज कौन सा दीन, कौन सी मुहज्जब कौमें आज जो दुनिया के अंदर है अपने कैदियों के साथ ऐसा सलूक करती, जो इस्लाम ने बताया। آج اگر مسلمان ہی کچھ برا سلوک کرتے ہیں تو وہ اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہے، اسلام یہ ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھو یہ ہے اسلام۔ اگر آج مسلمان اسلام کو بدنام کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا ایکشن ہے، وہ خود برا کر رہا ہے۔ بالکل بالکل، تو یہ اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ دیکھو یہ ہے اسلام کے طریقے، ہم ان سے سیکھیں اور ان کو عام کریں کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، جو قیدی کے ساتھ بھی ایسا۔ اور اتنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سہیل جو تھا، جو اگر آپ کو یاد ہو انشاءاللہ ہم وہاں پہ پہنچیں گے، شاباش، ابو جندل کے والد، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ وہ ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا نا، سہیل کو آتے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی آسانی ہوگی، سہل سے ہے نا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں رکھا تھا۔ کون سی دنیا میں ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ حکمران ہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ کے حکمران ہے سارے مدینہ، حکمران اپنے گھر میں کسی قیدی کو رکھے، اسی چھت کے نیچے جہاں پہ وہ خود ہو، ایسا کہیں آپ نے دیکھا ہوگا؟ اور ایسے سلوک قیدیوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ اپنے سے بڑھ کے اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اپنے سے بڑھ کے کھانا کھلا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی کہ کراہ رہے ہیں، جب ان لوگوں کو باندھا ہوا تھا قیدیوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اتنے تھے کہ سویا نہیں جا رہا تھا، میں ان کی مشکیں ذرا بہت زور سے کسا ہوا ہے، ذرا لوز کر دو ان کو۔ سبحان اللہ، اور آج کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے اگر آپ دیکھ لیں، استغفر اللہ، کہ میں کہتی ہوں کہ ہم پھر دنیا میں کئی قومیں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی ہیں اور بہت سیولائز سمجھتی ہیں، لیکن یہ نمونہ دیکھو تو واقعی پتا چلتا ہے کہ رحمت للعالمین کون ہوتے ہیں اور کیا ان کا سلوک تھا۔ پھر اپنے نبی کی اس زندگی کو عام کریں اور دنیا کو بتائیں تو ان کو بھی محبت ہو جائے ایسے نبی سے، جو قیدی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو بتاؤ وہ اور کسی ساتھ، اور وہ بھی کافر۔ اور یہ دیکھیں، یہ کوئی عام کافر نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو ابھی تک صبح تک آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو مارنے آئے تھے، مخالفوں میں سے تھے، اور اتنا ڈھول دھماکہ کرتے ہوئے پہنچے تھے، اور کتنی بڑی بڑی ان کی باتیں تھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر قیدی نہ ہوتے تو مسلمانوں کی گردنیں اڑا رہے ہوتے۔ ایسے دشمن کے ساتھ بھلائی کرنا کتنی بڑی بات۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ایک موسیٰ بن عمیر کے یہی جو بھائی ہیں، یہ بھائی بدے ہوئے تھے ظاہرہ انصاری کے گھر میں، اب جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بھائی یہاں سے گزر رہا ہے موسیٰ بن عمیر، تو انہوں نے اپنے بھائی کو پکارا کہ میری مدد کرو، تو بھائی نے انصاری سے کہا کہ دھیان رکھنا یہ بھاگنے نہ پائے، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس سے تمہیں منہ مانگی قیمت ملے گی، بہت بڑی قیمت ملے گی، دھیان رکھنا۔ تو بھائی نے کہا کہ تم مجھ سے یہ سلوک کر رہے ہیں، میرے بھائی ہو کے؟ فرمایا تم میرے بھائی نہیں، یہ میرا بھائی ہے۔ یہی جو ہم نے ابھی پڑھا سورہ ہود میں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نہیں، تمہارا اور اس کا راستہ الگ الگ ہے نا، تو یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیری اہل نہیں ہے، تیری اہل کون ہے؟ یہ تو جو تیرے ساتھ ایمان والے، ایمان کا رشتہ اتنا ہے کہ خون کے رشتے سے بھی اوپر ہو جاتا ہے۔ ہاں، خون کے رشتے میں بھی ایمان ہو تو ظاہر ہی بات ہے یہ رشتہ بہت بڑا ہے، لیکن اگر خون کا رشتہ اور ایمان کا رشتہ نہیں ہے نا، خون کا رشتہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، تم نہیں میرے بھائی، یہ میرا بھائی۔ کیسی کیسی مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طرح ابو سفیان کا ایک بیٹا عمر بن ابو سفیان تھا، اس کو بھی جب قید کر لیا گیا، قیدی بن کے آیا تھا، تو ابو سفیان سے بھی فدیہ مانگا گیا، اس نے کہا کہ میں کیا فدیہ دوں، مال بھی دیں اور ہم خون بھی اپنوں کے بہائیں، میں تو نہیں فدیہ دیتا، رکھے چھوڑیں اپنے پاس جب تک رکھنا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کو یقین تھا کہ مسلمان کبھی برا سلوک نہیں کریں گے، اگر اس کو یہ ہوتا نا جان سے مار دیں گے تو کبھی نہ یہ کہتا، اس کو پتا تھا کہ یہ قیدیوں کے ساتھ برا نہیں۔ آج اتنے اتنے بڑے انہوں نے بنائے ہوئے قوانین، پرزنرز آف وارز کے لیے کتنے بڑے بڑے قوانین ہیں، اس وقت تو کوئی قانون نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اگر برا بھی سلوک کریں، جو بھی سلوک کریں تو لیجیٹیمیٹ تھا، لیکن اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، रहम की, इंसाफ की, और एक दूसरे के साथ मामी हमदर्दी की। तो ये भी हमें पता चलता है। इसी तरह अबुल आस का जो किस्सा है वो बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। अबुल आस कौन था? शाबाश, ये बाद में मुसलमान हो गए थे, ये भी कैद होके आए थे, हजरत जैनब के शौहर। और हजरत जैनब कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी, ठीक है? तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी कैदी बन गए। और ये कितनी एक बड़ी बात है, इनका निकाह हजरत जैनब से जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले से हुआ हुआ था, और अभी तक कोई ऐसा अहकामात नाजिल नहीं हुए थे कि मुशरिक का निकाह मुसलमान के साथ खत्म हो जाता है। तो उनका निकाह चल रहा था और ये बहुत अच्छे शौहर थे, बहुत ख्याल रखने वाले शौहर थे। अच्छा, अब यहाँ पे पता चलता है, बुक में देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने शौहर अबुल आस के फिदिये में जो माल भेजा उसमें एक हार भी था। ये हार खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का था। ये हार उस वक्त का था कि माँ ने अपनी बेटी को शादी पे ये हार तोहफे में दिया। और ये उन्होंने हजरत ज़ैनब को अबुल आस के पास रुखसत करते वक्त ये हार उन्हें दिया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो आप पर बड़ी रिक्कत तारी हो गई, आंसू बहने लगे हार देख के। क्यों? खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की याद आ गई। और आपने सहाबा कराम से इजाजत चाही कि अबुल आस को बिला फिदिया छोड़ दें। सहाबा ने ऐसा ही किया, उन्होंने कहा आपकी बात को पीछे करना कि ये हार वापस दे दो इनको, और इनको इसके बगैर ही जाने। चुनाचे आपने अबुल आस को इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वो ज़ैनब बिनते रसूल की राह छोड़ देंगे, यानी उनको यहाँ भेज देंगे। एक शर्त रखी कि उनको यहाँ पे वापस भेज देंगे। अबुल आस ने मक्का जाकर उनका रास्ता छोड़ दिया और वो मदीना हिजरत करके आ गई। और ये भी क्या हुआ था कि हजरत जब ये वापस गए थे तो कुछ दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा कराम को भेजा कि मक्का के बाहर पड़ाव करना और तुमसे कोई वहां पे आके मिलेगा, कोई मुसाफिर कोई आएगा जो तुमसे मिलेगा। तो क्या हुआ कि उधर अबुल आस जब वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने हजरत जैनब को यानी भेजने के लिए इंतजाम किया, अपने भाई से कहा, अपने छोटे भाई से, कि इनको छोड़ के आए। और छोटे भाई जो थे यानी हजरत जैनब के जो देवर थे वो दिन के वक्त ही उनको ऊंटनी पे बिठाया, उनका सामान उस पर लादा और लेकर चढ़ पड़े। अब कहां काफरों ने देख के ये बर्दाश्त करना था कि रसूल की बेटी और ये ऐसे हमारे पास से जा रही है, ये तो हमने अपने कब्जे में इनको रखे ताकि जब भी इस्तेमाल करना हो तो फिर हम कर सकते हैं इनको किसी के लिए भी बातचीत के लिए। तो उन्होंने तो उनका रास्ता घेर लिया कि हम तो नहीं जाने देंगे। और इस कदर उन्होंने यानी बुराई की ये कि यानी उनके सामने उनके देवर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं इनको इनको डिफेंड करूंगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊंट के ऊपर मारा और ऊंट बिदक गया, जिसकी वजह से वो इतना उछला कि हजरत जैनब ऊंट से गिर गई और वो हामिला थी और उनका हमल जाया हो गया। और ये भी कहा जाता है कि वो जो उस वक्त जख्मी हुई लहूलुहान हो गई थी, बाद में जो आने वाले सालों में वही जो जख्म था उसकी वजह से इनकी वफात हो गई थी बाद में। लेकिन यानी इस वक्त उन्होंने बिल्कुल लिहाज नहीं किया। तो उस वक्त जब उन्होंने घेरा हुआ और इनके देवर अब ये मुकाबला कर रहे हैं उनके साथ, तो अबू सुफियान दौड़ा हुआ आ गया। मैंने आपको बताया वह अकलमंद बहुत था और इसका अपना बेटा भी उधर फंसा हुआ था। तो उसने वो दौड़ा हुआ आ गया और उसने आके कहा कि मैं इस मामले को टेक केयर करता हूँ, तुम लोग सारे जाओ, मैं इसको जाने नहीं दूंगा, तुम लोग जाओ। उनको रुख्सत कर दिया और इनके देवर कनाना से कहा कि तुम दिन दहाड़े इनको लेकर जा रहे हो, तुम क्या समझते थे कि हम लोग ऐसे जाने देंगे? तो तुम जरा समझदारी के साथ यानी कुछ तो ऐसी तदबीर करो कि पता ना चले, यानी ये कहने का इशारा था। तो वो वापस लेकर उनको वापस भेज दिया कि घर वापस चले जाए। और उसके बाद कुछ दिन के बाद किनाना उनको दोबारा जाहिर मुंह अंधेरे किसी वक्त लेकर निकले और उनको वहां पे हवाले कर दिया उन दो आदमियों के, और वो लेके हजरत जैनब को आ गए थे। तो इनका यानी एक तरह से फिदिया कह लें, हार तो वापस कर दिया, माल तो वापस कर दिया, लेकिन ये था कि हजरत जैनब को ये भेज दें। और इसी तरह एक और भी थे जिनका ये हुआ था कि वो बहुत ही गरीब थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफिर था। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आके कहा कि ना मेरे पास माल है, ना मैं पढ़ना लिखना जानता हूँ, मेरे घर वाले गरीब हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है, बेटियां ही हैं मेरी। तो तो मैं क्या दे सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं दे सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा तुम्हें ऐसे ही रिहा कर दिया जाता है, लेकिन आइंदा के लिए तुम, ये शर्त है सिर्फ, आइंदा मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं लड़ोगे। तो उसने ये प्रॉमिस किया, और जब वो वापस गया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत पे अशार कहे, और वो बाद में मुसलमान भी हो गया। अबुल आस भी मुसलमान हो गए, सुहेल भी मुसलमान, अकील भी मुसलमान, नौफल भी मुसलमान, हजरत अब्बास भी, यानी अभी उन्होंने कहा तो था लेकिन यानी पक्के मुसलमान हो गए। तो इस तरह बहुत सारे लोग मुसलमान हुए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ने सलूक था। एक और बात जो आती है वो भी आपको बता दूं कि हारिसा, एक मैंने जैसे आपको बताया कि नौजवान सहाबी थे जो जिनका बदर में जो शहीद हुए थे, ये भी कहा जाता है कि शायद वो पहले शहीद थे। तो जब सारा लश्कर इस्लाम वापस आया और इनकी वालदा ने इनको नहीं देखा, तो इनकी वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, हारिसा मुझे इस कदर प्यारा था, ये तो आपको पता है, अब अगर वो जन्नत में है तो मैं सबर करूं और अजर की उम्मीद रखूंगी, लेकिन अगर वो किसी दूसरी जगह है तब आप देखेंगे कि मैं कैसा रोती हूँ, क्या करती हूँ, यानी फिर दुनिया देखेगी कि मैं कैसा रोती हूँ, कितना गम होगा उस माँ के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम करे, क्या तू पागल हो गई है, वहां भला कोई एक जन्नत है, जन्नतें तो बहुत सारी हैं, जहां तक हारिसा का ताल्लुक है वो तो सबसे आला जन्नत जन्नतुल फिरदौस में है। ये बुखारी की हदीस है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। रुकैया की वफात और उम्मे कुलसूम से उस्मान रजी अल्लाह ताला की शादी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त गजवाए बदर के लिए तशरीफ ले गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत रुकैया बीमार थी और हजरत उस्मान के अकद में थी, लिहाजा आपने उन्हें हुक्म दिया कि उनकी तीमारदारी के लिए मदीना में रहें और इन्हें भी बदर में हाजिर होने वाले का अजर और हिस्सा मिलेगा। उसामा बिन जैद को भी उनकी तीमारदारी के लिए रोक दिया। हजरत रुकैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी से पहले ही वफात पा गई। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का बयान है कि हमारे पास फतह की खुशखबरी उस वक्त पहुंची जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबजादी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा पर मट्टी बराबर कर चुके थे, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच कर मुतमईन हो चुके तो आपने अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हजरत उस्मान से कर दी। इसीलिए हजरत उस्मान को जुन्नूराइन यानी दो नूर वाले कहा जाता है। हजरत उम्मे कुलसूम ने इनके अकद में रहते हुए शाबान 9 हिजरी में वफात पाई और बकी में दफन हुई। अभी आपको पता चला कि हजरत उस्मान की शादी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी से कर दी। एक और बात जो इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे बता दूं कैदियों के हवाले से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कैदियों के पास आए ना और आपने उनका जायजा लिया, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही थी जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था कि अगर आज मुताम बिन अदी जिंदा होता और मुझसे एक दफा इन कैदियों का रहाई का मुतालबा करता तो मैं इन सारे कैदियों को रिहा कर देता। हालांकि उन कैदियों से तो बड़े बड़े फिदिये मिलने थे, बड़ा इस्लाम को फायदा होना था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि एक दफा मुतम बिन अदी अगर मुझे आके कहता तो मैं उसके कहने पे इन सबको आजाद कर देता। कौन था मुतम बिन अदी जिसके एहसान आपको इतना था? ये बदर से ना कुछ दिन कुछ हफ्ते पहले ही फौत हुआ था। मुताम बिन अदी, शाबाश। हाँ, बहुत सारे इसके काम है मुताम बिन अदी के, और ये याद रखें कि ये कुफर पे ही इसकी मौत हुई थी, ये कोई मुसलमान नहीं हुआ था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इतनी बड़ी बात इसके बारे में कही जबकि वो फौत भी हो चुका है, ठीक, इससे पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कितना रिगार्ड करते थे, क्योंकि थ्रू आउट मक्की पीरियड इसने इस्लाम की, मुसलमानों की यानी मदद करने की भी कोशिशें हुई, लेकिन जो मुजालिम मुसलमानों पे होते थे जैसे शेबी अबी तालिब में जब मासूर थे, तो उस वक्त भी बायकॉट भी जब हुआ ना तो ये पेश पेश था बायकॉट कराने में। और फिर दूसरी ये बात एक और थी कि जब जैसे आप बता रहे कि ताइफ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की पनाह चाहिए थी मक्का में एंटर होने के लिए, और कितने लोगों को पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भिजवाए हजरत बिलाल के जरिए, कोई कुछ कह देता था कोई कुछ कह देता था। इसने कहा कि मैं पनाह दूंगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं ऐसे नहीं, तुम अपने बेटों को लेकर आओ। तो इसने अपने बेटों को, इसके बहुत सारे बेटे थे, उनको हथियार पहनाए, हथियार उन्होंने सजाए, और वो सारे आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए, और ये एंटर हुआ फिर मक्का में आपको लेकर, और इसने कहा कि आप तवाफ करें, और बेटों को कहा कि खड़े रहो इनके लिए, और सबको ऐलान किया कि अगर किसी ने इनको नुकसान पहुंचाया तो मुझे नुकसान पहुंचाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे इसका जैसे एक एहसान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ये बात वहां पे फरमाई, वहां पे तो मुतमिन नदी था भी नहीं, फिर क्यों ये बात फरमाई बताएं। एहसान का बदला एहसान, हल जजाउल एहसानी इल्ला एहसान। एहसान का बदला चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, एहसान का बदला एहसान। अब ये जो हम कह देते हैं ना कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह सकते थे, तो क्या इसने क्या मुझे पनाह दी, अल्लाह ने पनाह दी है ना, असल तो अल्लाह की पनाह है, इसकी क्या पनाह की बात है। वालदेन का जैसे, अब वालदेन के साथ एहसान करने का कहा गया, अब कोई कहे मुझे तो अल्लाह ने पैदा किया ना, वालदेन का क्या एहसान है। अल्लाह ताला बताते हैं कि इंसानों में भी जो सबब बनता है ना उसका एहसान मानो। अल्लाह ताला तो करने वाला है, लेकिन अल्लाह किसी को सबब बनाता है, और जिसको सबब बनाया उसका एहसान मानो। एक मुशरिक होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एहसान मांगा, ये नहीं फरमाया कि तो काफिर है मैं इसका क्या एहसान मांगू। उसने मक्की जिंदगी के अंदर ये जो भी एहसान किए थे वो कोई मुसलमान थोड़ी हुआ था, जब मुसलमान ही नहीं हुआ तो हमने इसको क्या करना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एहसान माना। आज भी मैं आपको ये बगैर किसी उसके कहती हूँ, ये जो आज हम अपनी, यानी अगर किसी मुल्क ने हमें नौकरी के लिए वीजा दिया, किसी मुल्क ने हमें अपने मुल्क में आने की इजाजत दी, पनाह दी, या तालीम के लिए हमें अपने मुल्क में आने दिया, तो ये एक एहसान है। उसका बदला ये नहीं होना चाहिए कि आप तखरीबी कार्रवाइयां शुरू कर, आप उनके जड़ें काटना शुरू कर दें, आप बद्दुआएं करें कि हाय काश ये बस मिट जाएं किसी तरह क्योंकि ये काफिर है। क्या हमें सीरत से यही सबक मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे काफिरों के साथ भी उसने सलूक किया। उतबा बिन रबिया के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो ऐसे काफिर थे, हर काफिर एक लेवल का नहीं, कई होते थे जो दुश्मनी करते थे उनके साथ भी आपने देख लिया, और वो उनकी दुश्मनी भी कैसी थी वो भी आप जानते, और कई तो जो आम सलूक रखने वाले थे, यानी कोई ना मुखालफत थी और ना ही कोई बहुत अच्छा था, और कई थे जो आउट ऑफ द वे भी जाके मुसलमानों के लिए करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान को याद रखने वाले थे, चाहे वो एक काफिर का ही एहसान क्यों ना हो। तो याद रखें कि हम, हमारे साथ भी अगर कोई काफिर भी एहसान करता है तो उस एहसान को एहसान समझे, फिर आगे हूं करके ये ना कहें कि बस अल्लाह ने किया ना, हम क्यों इनका समझे, और अब हम इनके लिए बुरे जज्बात रखें, ये तो मुनाफ़कत है। ऊपर ऊपर से तो आप स्माइल करें और अंदर से आप कहें कि मैं इनकी जड़ें कटे किसी तरह, ये तो मुनाफ़कत है। और आप नहीं देखते कहीं पे भी सीरत में मुनाफ़कत, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं या जो सहाबा कराम हैं, जो दिल से हैं वो इस मुंह पे, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से बहुत अच्छे और हम तो आपके जैसे और आपके साथ हैं, और अंदर से इतने बुग्ज़ और कीने रखें, ये सीरत में कहीं नहीं मिलती। मोमिन जो होता है वो एक चेहरे वाला होता है, दो चेहरों वाला नहीं होता। तो इसलिए हमें सीरत से देखें कैसे कैसे सबक मिलते हैं, हमें ये भी पता चलता है हमने काफरों के साथ कैसे सलूक करने, उनके साथ कैसे मामलात करने, जो कैदी हैं उनके साथ कैसे मामलात करने हैं, चाहे वो काफिर ही क्यों ना। और आज आप हमारे मुल्कों में भी देखेंगे जेलों में कैदियों के साथ क्या सलूक होते हैं, मुसलमान हो के भी, काफिर को तो दूर की बात छोड़े, हमने उनको क्या दर्स पढ़ाने हैं, हमें तो खुद ही नहीं पता कि हमारे नबी की सीरत क्या है। तो बहुत सारे सबक हैं इसमें, अल्लाह ताला हमें सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए, और सीरत पे वाकई जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी उसके मुताबिक हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि